पिछले अध्याय में आपने देखा कि मेहरा खानदान जयपुर पहुंच गए और उनका स्वागत हुआ। सुधीर शादी नहीं करना चाहता था और अयान के स्वभाव में बदलाव आ गया था, जिसे सबने नोटिस किया। अयान जोया के ख्यालों में खोया रहता है और उसे तलाक लेने के फैसले पर पछतावा होता है। वो सैफ के साथ मैथ्स पढ़ता है, जिसे सहर बेगम हैरान हो जाती हैं। किचन में जोया को देखकर अयान खो जाता है, लेकिन जोया उसे देखकर तनाव में आ जाती है। नावेद साहब तलाक की फॉर्मेलिटी पूरी करने की बात करते हैं, जिसे अयान टाल देता है। जोया को अयान का ये बदलाव समझ नहीं आता। नाउ नेक्स्ट, पूरी मेहरा फैमिली वेलकम के बाद अपने अपने कमरों में पहुंच चुकी थी। उन्हें कमरों की ओर गाइड किया गया था। तीसरी मंजिल यानी सबसे ऊपर वाली मंजिल के कमरे मेहरा फैमिली के बच्चों लिए तय किए गए थे, जबकि घर के बड़ों के लिए बीच वाली मंजिल पर कमरे रखे गए थे। रात के डिनर तक फैमिली अपने अपने कमरों में ही रहने वाली थी। वहीं उनके लिए चाय, नाश्ता और जो भी ज़रूरत का सामान था कमरे में भेज दिया गया था। जयपुर का मौसम मानो गर्मी और सर्दी के बीच की एक मीठी सी डोर पर टिका होता है। दिन में धूप अब चुभती नहीं, बस हल्की सी गर्माहट लिए आसमान से उतरती है, जिससे गलियों में एक नरम सुनहरी रोशनी फैली रहती है। दोपहर की हवा में ना उमस होती है ना ठंड, बस एक सुकून देने वाली खुश्की। शाम होते होते अरावली की पहाड़ियों के पीछे ढलता सूरज आसमान को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग देता है। हल्की सी ठंडी हवा में बगीचों और सूखी मिट्टी की महक खुल जाती है। ये वो मौसम है जब बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ शहर की हल्की चहल पहल और आसमान का बदलता रंग देखते हुए वक्त को थम जाने का मन करता है। थोड़ी देर बालकनी में बैठने के बाद वेदांत ने अपने लिए जूस ऑर्डर किया था। जूस के साथ कुछ स्नैक्स भी आ गए थे। पीछे जहां वो बैठा था, होटल के पीछे का लॉन साफ नजर आ रहा था। बेहद खूबसूरत नज़ारा। उसका कमरा होटल की सबसे आखिरी तरफ था और कमरे की बड़ी सी विंडो से लॉन का दृश्य साफ दिखता था। उस कमरे की बनावट थोड़ी अलग थी, क्योंकि वो फ्लोर का आखिरी कमरा था। उसके बाद कमरे खत्म हो जाते थे और फ्लोर का किनारा आ जाता था। कमरे की बाईं तरफ की दीवार पर एक छोटी सी पुरानी खिड़की थी, जो बंद थी। शायद ये खिड़की बहुत पुराने समय की थी और अब इस्तेमाल नहीं होती थी। उस पर खूबसूरत सा परमानेंट कर्टन टंगा हुआ था। वेदांत ने कर्टन को हल्का सा साइड में खिसकाकर बाहर झांका। उस दिशा में शायद गेस्ट हाउस था और कुछ क्वार्टर्स, जहां होटल संभालने और वहां काम करने वाले लोग रहते थे। ये देखकर वेदांत ने सोचा कि इस तरफ खिड़की खुली रखने की कोई जरूरत नहीं है, और वो उसे बंद करने लगा। तभी उसकी नजर नीचे भागती हुई एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। वो वही बच्ची थी जिसे वो मॉल में देख चुका था। वेदांत ने शीशे से ध्यान से देखने की कोशिश की। उसके पीछे भागती हुई मानवी नजर आई। उसने बच्ची को पकड़ लिया और वो बच्ची उसकी टांगों से चिपक गई। मानवी हंस रही थी और कुछ बोल भी रही थी, लेकिन वेदांत को आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मगर मानवी यहाँ कैसे हो सकती है? वेदांत के मन में अचानक ये सवाल कौन था? कहीं मुझे ऐसा ही तो नहीं लगा? वो एक पल को खिड़की से ऐसे चिपक गया जैसे उसकी आंखें सच को पकड़ लेना चाहती हों। उसने फिर से बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। खाली लॉन, हल्की हवा में झूमते पेड़ और दूर से आती रसोई की महक। क्या वो सच में मानवी थी और वो बच्ची के साथ क्या कर रही थी? वो सोच में डूब गया। हो सकता है वो बच्ची किसी गेस्ट की हो और मानवी बस उसके साथ खेल रही हो। ये भी संभव है कि मानवी ने अब नैनी का काम शुरू कर दिया हो, बच्चों की देखभाल करने के तौर पर। एक गहरी सांस लेकर वेदांत ने कर्टन वापस गिरा दिया और बालकनी में आकर रेलिंग पर टिक गया। शाम की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके मन में अब भी वही नजारा घूम रहा था, मानवी और वो छोटी सी बच्ची। उसके होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। पता नहीं क्यों, मगर उस बच्ची को देखकर अच्छा लगा। उसने अपने आप से कहा, चलो आज उससे दोस्ती करूंगा, शायद किसी गेस्ट की होगी, डिनर पर मिल जाएगी। वो इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान था कि वो बच्ची किसी और की नहीं, उसकी और मानवी की अपनी बेटी थी। एक ऐसी बेटी जिसके बारे में वो अब तक नहीं जानता था। शायद इसीलिए उस छोटी सी मासूम पर उसे अजीब सा अपनापन और बेइंतहा प्यार महसूस हो रहा था। वेदांत का दिल उस पल अजीब तरह से हल्का हो गया। कितनी प्यारी लग रही थी, उसने मन ही मन दोहराया। और मानवी, वो भी हंस रही थी। मानवी के बारे में वो फिर से सोचने लगा। वो सोचता हुआ वापस पीछे चला गया था। हर्ष की बहन की सगाई से एक दिन पहले मानवी को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। उसी वक्त वेद बाहर बालकनी में खड़ा था। तभी गली में एक छोटी सी मारुति आल्टो आकर उनके आंगन में रुकी। वेद अनायासी उस तरफ देखने लगा। गाड़ी से सबसे पहले एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। उसके पीछे से दो बच्चे भी बाहर आए। एक की उम्र लगभग 5-6 साल और दूसरा 8-9 साल का रहा होगा। अब तो वेद की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था कि वो साथ वाले घर में क्या हो रहा है जरूर देखे। मानवी के मामा मामी बाहर आकर मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें घर के अंदर ले जाए। तकरीबन 1 घंटे तक वो लोग वहीं से रवाना हो गए। मानवी के दिमाग में उस वक्त कोई और ही बात चल रही थी, उसे देखने के लिए जो लड़का आया था। लड़के की उम्र करीब 40 साल थी। उसकी पहली बीवी का देहांत हो चुका था और उसके दो बेटे थे। मानवी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो किसी भी हालत में उससे शादी नहीं करना चाहती थी। मानवी ने अपनी मामा से भी इस बारे में बात की थी, लेकिन जो कि उस आदमी के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, इसलिए उसके मामा ने कहा कि तुम पूरी उम्र आराम से रहोगी अगर उससे शादी कर लो। लेकिन मानवी कामानिस रिश्ते से पूरी तरह इनकार कर चुका था। उसने अपने बारे में एक फैसला कर लिया था। जब किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी तो उसने घर छोड़कर भाग जाने का फैसला कर लिया और उसने दिन चुना वही दिन जब हर्ष की बहन की सगाई थी, ताकि सब लोग सगाई में व्यस्त रहें और उसे कोई रोक ना पाए। उसकी एक दोस्त थी जो पहले उसके कॉलेज में पढ़ती थी और अब मुंबई में रहती थी। मानवी ने पहले से ही एक छोटा सा बैग तैयार कर रखा था, कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और उसके स्कूल कॉलेज के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स। उसने तय कर लिया था कि वो चुपचाप घर छोड़कर ट्रेन पकड़ लेगी और मुंबई चली जाएगी। मगर जिंदगी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती। हम चाहे जितनी भी योजनाएं बना लें, आने वाले पलों में क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। किस्मत की किताब में क्या लिखा है ये पहले से कोई नहीं जान पाता। कई बार हालात हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां जाने का हमने कभी सोचा भी नहीं होता। असल में आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उस दिन हर्ष की बहन की सगाई थी। घर में सभी लोग बेहद बिजी थे। चूंकि मानवी की मामा का घर भी पास ही था, इसलिए उन्हें भी इनवाइट किया गया था। गांव में वैसे भी रिवाज होता है कि आस पड़ोस के लोग शादी ब्याह में पहले ही आकर मदद करने लगते हैं। मानवी के मामा मामी और पूरा परिवार सुबह सुबह ही मदद के लिए पहुंच गए थे। सगाई के दिन घर में माहौल बहुत व्यस्त था। रसोई में पकवान बन रहे थे, आंगन में पंडाल सजा था। वेद भी सबके साथ काम में लगा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान कई बार मानवी पर चला जाता। मानवी को उसने हमेशा ही एक साधारण रूप में देखा था, साधारण सा प्रिंटेड सूट पहने हुए, बिना मेकअप के, बालों को पीछे चोटी में बांधे हुए। मगर आज सगाई के लिए वो तैयारी के साथ आई थी। उसने हल्के रंग का अनारकली सूट पहन रखा था जो उसकी त्वचा के रंग पर और भी निखर रहा था। बाल खुले थे जो हवा के साथ हल्के हल्के लहराते हुए उसके चेहरे को छू रहे थे। चेहरे पर कोई भारी मेकअप नहीं था, सिर्फ आंखों में हल्का सा काजल, होंठों पर मध्यम सी लिपस्टिक और माथे पर एक छोटी सी बिंदी। बस इतना सा बदलाव ही उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग की। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।